ओम शांति। आज की इस भक्ति की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। कहानी विदेश की है। किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा और वो स्वर्ग पहुंची। विदेश में जो स्वर्ग होता है उसका रखवाला सेंट पीटर होता है, जैसे भारत में चित्रगुप्त है उस तरह लेखा जोखा वो देखता है। तो उस आत्मा को वो स्वर्ग का टूर कराने निकल पड़ी। तो सबसे पहले देखा स्वर्ग में एक बहुत बड़ा सेक्शन है, वहां पर बहुत सारे फरिश्ते थे और वो सभी फरिश्ते बहुत बहुत व्यस्त थे। उनके पास बड़ी बड़ी फाइलें थी, उनके पास कलम थी, यहां से फाइल उधर कर रहे थे, यहां से फाइल वहां कर रहे थे, बहुत ही व्यस्त था। ऊपर लिखा था रिसीविंग सेक्शन। उस व्यक्ति ने पूछा ये क्या है, तो सेंट पीटर ने कहा ये रिसीविंग सेक्शन है। मनुष्य आत्माएं जो भी प्रार्थनाएं करते हैं, जो भी फरियाद करते हैं भगवान से, वो यहां पर रिसीव होती है। और हर दिन इतनी सारी आती है कि ये जो फरिश्ते हैं वो क्या है, बहुत ही व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मा जो है वो निरंतर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पिटिशन, कोई ना कोई फरियाद, कोई ना कोई प्रार्थना मांगते ही रहते हैं। तो ये वो सेक्शन है जो कि सबसे ज्यादा बिजी सेक्शन है स्वर्ग का। थोड़ा और आगे जाते हैं, आगे जाके एक दूसरा सेक्शन वहां दिखता है। वहां पर भी बहुत सारे फरिश्ते कुछ पैकिंग कर रहे होते हैं। तो व्यक्ति पूछता है ये कौन सा सेक्शन है जहां इतने सारे फरिश्ते हैं। तो सेंट पीटर कहते हैं ये पैकिंग एंड डिलीवरी सेक्शन है। क्या होता है यहां पर, पैकिंग होती है और वापस मनुष्य लोक में डिलीवरी होती है। किसकी प्रार्थनाएं, वरदान, ब्लेसिंग्स, दुआएं। तो ऐसा ये दूसरा सेक्शन है, बहुत व्यस्त और बहुत सारे कार्यकर्ता फरिश्ते वहां पर कार्यरत। थोड़ा और आगे जाते हैं, देखते हैं वहां पर एक दूसरा डिपार्टमेंट है और इस महकमे में केवल एक ही फरिश्ता बैठा है, वो भी खाली, उसके पास कोई काम ही नहीं है। तो व्यक्ति पूछता है ये कौन सा डिपार्टमेंट है। आप सभी से प्रश्न है ये कौन सा डिपार्टमेंट होगा। पहला डिपार्टमेंट था रिसीविंग सेक्शन, दूसरा था पैकिंग एंड डिलीवरी सेक्शन जो कि बहुत व्यस्त थे। ये तीसरा विभाग जहां पर एक ही फरिश्ता वो भी खाली बैठा है, उसके पास कोई काम ही नहीं है, ये कौन सा सेक्शन होगा। बाप की तो यहां बात ही नहीं है। नहीं, ये स्वर्ग के सेक्शन से जहां पर मनुष्य लोक की प्रार्थनाएं सुनी जाती है, फिर उनका जवाब दिया जाता है, आंसर दिया जाता है, समस्या भेजी जाती है, उसका हल पोस्ट किया जाता है वहां से। परंतु एक सेक्शन है जो तीसरे नंबर का सेक्शन है, विभाग है, वहां पर एक ही फरिश्ता है, वो भी खाली बैठा है, उसे कोई काम ही नहीं है, और ये है एक्नॉलेजमेंट सेक्शन, जिनकी प्रार्थनाएं पूर्ण हो गई। क्या उन्होंने कोई धन्यवाद भेजा, उसको रिसीव करने वाला यह सेक्शन है। वो व्यक्ति पूछता है यहां पर क्या रिसीव करना है, क्या एक्नॉलेजमेंट करना है। वो कहता है केवल एक ही शब्द जो कि कोई भेजता नहीं कभी, कौन सा? थैंक यू, कि प्रार्थना तो कर ली, प्रार्थना पूरी भी हो गई, प्रश्न तो पूछा, प्रश्न का जवाब भी मिल गया, परंतु कभी धन्यवाद दिया, कभी उसको शुक्रिया कहा कि हे प्रभु तूने हमें क्या क्या दे दिया। जन्म जन्म से हमने मांगा था कि तू आ जा, जन्म जन्म से हमने प्रार्थनाएं की थी प्रभु को पाने की, अब वो आया है, अब उसने हमारी सारी की सारी प्रार्थनाएं पूर्ण कर दी। पर क्या कभी हमने रुककर उसे धन्यवाद दिया है? क्या ये हृदय उसी अहोभाव से, उसी कृतज्ञता के भाव से, उसी ग्रैटिट्यूड से भरा है? क्या कुछ उसने हमारे लिए कर दिया? तो अभी सभी सर्वप्रथम कुछ समय के लिए अलर्ट होके बैठेंगे और सूक्ष्म शरीर धारण कर बाबा के पास पहुंचेंगे और बाबा से क्या कहेंगे? धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्राना उसका जो उसने हमें ऐसा पवित्र जीवन दे दिया। कहां नरक में पड़े थे हम और कहां आ गए, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा सुंदर, ऐसा दिव्य जीवन बन जाएगा, कभी सोचा नहीं था ऐसा बेहद का अपूर्व परिवार मिलेगा। उसको धन्यवाद करेंगे सबसे पहले। इस भट्टी की शुरुआत हम एक अनुभव से करेंगे। यह अनुभव केवल हमारा नहीं है, आप सभी का है, क्योंकि यह अनुभव आत्मा के परमात्मा से मिलन का अनुभव है। बाइबल में एक जगह लिखा है, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। आई हैव पिक्ड यू अप फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मैंने तुम्हें इस संसार से उठाया है। फॉर यू डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि तुम इस संसार के लिए नहीं हो, तुम मेरे लिए हो और मेरे कार्य के लिए हो। तो बाबा ने भी, हमने उसे चुना है या उसने हमें चुना है, किसने किसको चुना है, हमें तो पता ही नहीं था वो कौन है। बाबा ने कभी कहा है, तुम तो इतने डूबे हुए थे भक्ति में कि तुम्हारा एक बाल ही खाली शेष था, मैंने आकर तुम्हारा बाल पकड़कर तुम्हें भक्ति से बाहर निकाला है। साकार महावाक्य है बाबा के। हम कहीं और थे, उसे ढूंढ रहे थे, ढूंढना कैसा वो भी हमें पता नहीं था। तीर्थ यात्राएं की, गुरुओं की शरण गए, भक्ति की, शास्त्र पढ़े, सब कुछ किया। द्वापर से अब तक वो सब कुछ किया जो कि करना चाहिए था, जो हम सोचते थे करना चाहिए, परंतु उन सब से वो नहीं मिला। एक सूफी संत लिखता है कि मैंने 40 साल भगवान को ढूंढा, अब जाकर वो मुझे मिला है। मैं सोचता था कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं, परंतु मैं उसे नहीं ढूंढ रहा था, वो मुझे ढूंढ रहा था। तो हमारे जीवन में भी हमको लगता है भगवान स्वयं हमें ढूंढ रहा था, और ये केवल हमारा ही अनुभव नहीं, जैसे हमने कहा, यह हर ब्राह्मण आत्मा का अनुभव है। इस जीवन में हमें सबसे बड़ा नशा यह है कि हमारा अलौकिक जन्म स्वयं बाप दादा के द्वारा हुआ। बाबा की दृष्टि और बाबा के बोल द्वारा हमारा अलौकिक जन्म हुआ। इस जीवन की सबसे पहली मुरली हमने अव्यक्त बाप दादा से सुनी। हमारा जो सबसे पहला
एक अनाउंसमेंट करना था, कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत व्यवधान आ रहा है दो गाड़ियों की वजह से, MS-31EK8329 और EU-4257, जिनकी भी है तुरंत जो है उसको हटा दे, बहुत जरूरी है। EK8329 और EU-4257।
तो हमारा सबसे पहला सेवा केंद्र मधुबन, सबसे पहली साकार मुरली हमने सुनी ओम शांति भवन में, और दादी प्रकाशमणि के द्वारा। हमने अपने जीवन में जो पुरुषार्थ चालू किया, उस तीव्र पुरुषार्थ का जो स्थान था वो तपस्या भूमि मधुबन। और जिस स्थान से हम सबसे पहली बार मधुबन निकले वो स्थान ये है जहां आज हम बैठे हैं, नागपुर। यही से हम निकले थे और यही वो भूमि है। कितने सालों के बाद हम आज वहां आ रहे हैं। इसी भूमि से भगवान की यात्रा के लिए हमारा लौकिक जन्म यहां ही महाराष्ट्र में अमरावती शहर है, उसके पास एक गांव है दरियापुर। सुना है इस गांव का नाम? वहां हुआ। वहां हम ज्यादा समय नहीं थे, वहां से हम नागपुर आए और हमारा बचपन नागपुर में गुजरा। काटोल रोड, सेमिनरी हिल्स, जहां हमारे पिताजी हमको रोज लेके जाया करते थे। यहां कुछ समय रहने के बाद हम सातवीं के बाद अमरावती गए। वहां हम 12th स्टैंडर्ड तक रहे, 12वीं तक। तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट से क्रॉस हुआ। हम ये कहेंगे कि 12वीं तक का जो जीवन था एक संपूर्ण अंधकार में ही जीवन था, जिसमें कुछ हमें पता नहीं था जीवन का लक्ष्य क्या है। परंतु हां, कुछ ऐसी बातें हुई थी कि जिसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे मन पर था। उसमें एक गीत था मराठी का, बलसागर भारत हो, विश्वात शोभुणी रहो। पूरा नहीं सुना था, थोड़ा सा ही सुना था। हे जीवन ना तरी व्यर्थ, मी सिद्ध मराया लाहो, बलसागर भारत हो। तो इस गीत का जैसे कि एक प्रभाव था हमारे पर। तो जैसे हमने कहा कि 12वीं तक तो संपूर्ण अंधकार, 12वीं की एग्जाम हमने पूर्ण की, उसके बाद हमारे पिताजी और घर वाले सभी चाहते थे कि हम मेडिकल में हमारी एडमिशन हो। उसके लिए हमारे पिताजी कुछ किताबें लेके आए। यहीं पर नजदीक में वर्धा है और वर्धा के पास सेवाग्राम है, वहां पर सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज है, देखा है, कईयों ने देखा होगा। वो ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज है, उसकी अपनी एग्जाम होती है, उसकी अपनी एंट्रेंस एग्जाम होती है। एक है ऑल इंडिया एग्जाम, एक है स्टेट लेवल की एग्जाम, एक होती है ऑटोनोमस सेवाग्राम की एग्जाम। तो उस एग्जाम में एक चौथा सब्जेक्ट होता है, पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और चौथा होता है गांधीयन थॉट्स। तो हमारे पिताजी हमारे लिए वो कुछ किताबें लेके आए महात्मा गांधी की। तो अब तक तो हमने कभी जीवन क्या है इसके बारे में सोचा नहीं था। अब तक जीवन वैसा ही जा रहा था जैसे कि बाकी सभी बच्चों का गुजरता है। अब हमारे हाथ में एक किताब आई, सत्य के प्रयोग, इंग्लिश की छोटी सी किताब थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, M.K. गांधी। क्योंकि उस एंट्रेंस के लिए ये एक स्टडी करना होता है गांधीयन थॉट्स, ये चौथा सब्जेक्ट है। चार सब्जेक्ट्स में पास होना होता है तभी वहां जाकर एंट्रेंस में एग्जाम में हम वहां पर पास होकर वहां पर एंट्री मिलती है। तो हम ये किताब पढ़ने लगे, छोटी सी किताब थी, उसका भी छोटा वर्षन, संक्षिप्त, बड़ा वाला नहीं, संक्षिप्त, एब्रिज्ड। तो वो किताब हम पढ़ने लगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, और वो किताब पढ़ते पढ़ते एकदम हम मौन में चले गए। उस किताब को पढ़ते पढ़ते हमको लगा कि इसमें जिस व्यक्ति का जीवन है ये हमारा ही जीवन है, जो जो घटनाएं इसमें हो रही है जैसे हमारे ही जीवन में हो रही है। उन्होंने चोरी की, पश्चाताप किया, हमने तो कभी चोरी नहीं की थी, पर हमको लगा कि हमने बहुत पाप किए हैं। ऐसा कोई पाप हमने किया नहीं था, परंतु हमको लगा कि हमें भी पश्चाताप करना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी, वो किताब हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, और धीरे धीरे पूर्ण मौन में चले गए। वो मौन 6 मास चला, जिसमें हमारे पिताजी को ये चिंता हो गई कि इसने बोलना ही बंद कर दिया है, इसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्या हुआ। परंतु वो किताब पढ़ते पढ़ते ही हमें एक प्रकाश जैसे मन में आया कि जीवन का जो लक्ष्य है वो संसार नहीं, परमात्मा है। उसी बीच हमने और एक किताब पढ़ी, एक छोटी सी फटी पुरानी किताब हमारे घर पे थी, लव ऑफ गॉड, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स, छोटी सी किताब थी। उसमें लेखक अपने ईश्वरीय प्रेम का वर्णन कर रहा था कि कैसे ईश्वरीय प्रेम का तीर उसके हृदय में चुभ गया है, द अनहीलिंग वुंड्स ऑफ गॉड्स लव, वो घाव भर ही नहीं रहा है। तो ये दो किताब और वो मौन, वो मौन ऐसा था कि जैसे कि जीवन की दिशा ही बदल गई। और फिर हमारा रिजल्ट आया 12th स्टैंडर्ड का, हमको याद है वो दिन जब रिजल्ट आया, हम एक वैराग्य अवस्था में थे, जैसे कि इस रिजल्ट से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, और क्योंकि रिजल्ट में बहुत अच्छे मार्क्स थे हमको, तो घर में एकदम सब लोग बहुत खुश थे। उसमें उस समय पीसीबी और पीसीएम इस तरह से दो ग्रुप रहते थे, मैथमेटिक्स का और बायोलॉजी का, तो हमको दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स थे, इसके लिए लोग हमारे घर वाले बहुत खुश हो रहे थे। परंतु इतने अच्छे मार्क्स होने के बाद में फिर भी वो थोड़े दुखी भी थे, क्योंकि मेरिट में नहीं आया था, मेरिट कुछ 1 या 2% से रह गया था, परंतु पीसीएम ग्रुप में 97% कुछ थे, और पीसीबी ग्रुप जो था बायोलॉजी का उसमें 95% कुछ थे, फिर भी वो थोड़े तो दुखी थे ही। ये तो हमने देखा कि मेरिट मदे नहीं आए, तो हमने देखा हम इतने डिटैच हो गए हैं इस परिवार से, इस घर से, उस रिजल्ट से, जैसे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, ये रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद फिर हमारे पिताजी ने, उनके तो इच्छा थी कि हम मेडिकल में जाए, हमारी कोई इच्छा नहीं थी कहाँ जाना है, मेडिकल में जाना है, कहीं पर भी एडमिशन मिल रही थी, चाहे मेडिकल, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे कहीं पर भी। तो मेडिकल के लिए उन्होंने सोचा, हमने कहा ठीक है, और वो हमें नागपुर लेके आए मेडिकल कॉलेज की वो जो प्रोसेस थी एंट्री की, नागपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो वहाँ पर हम अपने पिताजी के साथ आए और पिताजी हमारे वहाँ बैठे थे, हम वहाँ से निकल गए और सोचा थोड़ा घूमते हैं, और उस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया, जीएमसी नागपुर, और देखा एक वार्ड से दूसरे वार्ड और दूसरे वार्ड से तीसरे वार्ड, और हमको एकदम आंसू आने लगे। हमने देखा इतना दुख संसार में, और अभी हमारी एंट्रेंस एडमिशन तो हुई नहीं थी, परंतु वो देखकर ही हमने संकल्प किया कि यदि हम डॉक्टर बने तो अपना संपूर्ण जीवन इनकी सेवा में अर्पित करेंगे। जेका रंजले गांजले त्यासी मने सोवा पुले, द लॉस्ट द लोएस्ट एंड द लवलीएस्ट। कहीं हमने पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड, शिव ज्ञाने जीव सेवा। तो हमने सोचा कि इनकी सेवा हमें करनी है। हमारे पिताजी हमको ढूंढते ढूंढते आए, क्योंकि वो प्रोसेस उधर चालू हो चुकी थी कि हम कहां चले गए, तो ढूंढते ढूंढते आए तो हम किसी वार्ड में थे, तो फिर हमको लेके गए। तो एंट्रेंस हमारा एडमिशन हो गई। हमारी एडमिशन बहुत जगह हो सकती थी, पर उनको चाहिए था बेटा हमारा नजदीक चाहिए, तो यवतमाल में हमारी एंट्रेंस, वहां पर मेडिकल कॉलेज में हमारी एडमिशन हुई, वसंतराव नाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यवतमाल। तो हम वहां गए, 4.5 साल वहां रहे। अब ये जो 4.5 साल थे, क्योंकि जैसे एक दीप जगा था, परमात्मा क्या है, भगवान कौन है, तो हमारे ये जो 4.5 साल थे संपूर्ण भगवान की खोज में गए। बाबा कहते हैं ना, तुम जन्म जन्म का भक्ति का फल मैं देने आया हूं। हमको लगता है कि हमने 63 जन्म की भक्ति इसी एक जन्म में पूर्ण की, तो वो जो MBBS का हमारा पीरियड था 4.5 साल, ऐसा शायद ही कोई दिन होगा कि जिस दिन हमने भगवान को नहीं ढूंढा, हर दिन ढूंढा उसको। कभी राम कथा में ढूंढा, तो कभी भागवत कथा में ढूंढा, और फिर हम कभी कभी घर आते थे अमरावती, तो हमारी लौकिक बहन, शायद आप में से कई उसे जानते हैं, नीलम बहन जानते हैं, कुछ कुछ जानते होंगे, महल वाले सभी जानते हैं, महल सेंटर। तो हमारी लौकिक बहन थी, वो जब फर्स्ट MBBS में थी अमरावती में PDMC मेडिकल कॉलेज, उनके हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में एक मैडम थे, डॉक्टर बेलसरे मैडम, तो वो राजयोग पर क्लास कराते थे मेडिकल कॉलेज शुरू होने से पहले, 8 से 9 ऐसा कोई टाइम था, और उनकी पूरी 50 की बैच से हमारी एक बहन ही निकली उस बैच से। उसने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, उसने कभी कोई भक्ति नहीं की, और जिस दिन पहली बार अमरावती सेंटर गई और उसको लगा ये मेरा घर है, यही मेरा घर है, और वो ज्ञान में आ गई। और जैसे ही ज्ञान में आई, एक जबरदस्त विरोध हुआ हमारे घर में। हमारे पिताजी ने सारी किताबें जला दी, वो जो लाइट था वो फेंक दिया, और क्योंकि उसे इतना नशा था कि उसने बाहर खाना बंद कर दिया, उससे तो और ही ज्यादा हंगामा हुआ, और फिर उसका जाना बंद हो गया। फिर भी वो चुपके से जाने लगी। फिर तो हम जब घर आते थे, तो हम, हमारे घर में हमारी माँ को और हमारे जो दूसरे लोग थे उनको सुनाते थे, जो हम सुन के आए हैं रामकथा में कि भगवान श्री राम कहते हैं। तो हमारी बहन कहती थी, अच्छा वो त्रेता वाला राम? तो हमको आश्चर्य होता था, ये कैसा है, ये मतलब इसके मन में कोई भक्ति भाव ही नहीं है कि भगवान श्री राम को ये त्रेता वाला राम कहती है। तो हमको बहुत दया आती थी उसके ऊपर, बिचारी ऐसे ही थोड़ी ना किसी को भक्ति प्राप्त हो जाती है, बहुत पुण्य चाहिए भक्ति के लिए। तो जब भी हम घर पे आते थे हम उसे बहुत सारी बातें पूछते थे शास्त्रों की, तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं था, हमारी किसी भी प्रश्न का जवाब उसके पास नहीं होता था। हमारे पास प्रश्न बहुत थे पर उसके पास शास्त्र का कोई ज्ञान ही नहीं था। पर हमने देखा वो गीत गाती थी, वाह मेरे भाग मुझे मिले भगवान, ये दिल हर पल गाता रहता। तो हमने एक दिन ठान लिया कि इसको हम भक्त बना के ही रहेंगे। तो एस्कॉन, हरे कृष्णा सुना है सबने, एस्कॉन की भागवत कथा चल रही थी तो हम जबरदस्ती उसको एक हफ्ता उस भागवत कथा में लेके गए, सुबह का सत्र और शाम का सत्र। और उसके लिए बहुत प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु हे गोविंद इसको भक्ति दो। वो हमारे लिए प्रार्थना करती थी कि बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोलो। हम उसको बहुत प्रश्न पूछते थे, वो कहती थी तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। तो हम उसको भागवत कथा में लेके गए तो वो यहां वहां देखती रहती थी और आते समय कहती थी कि 5 मिनट सेंटर पर रुकना है। तो हम गाड़ी रोकते थे बाहर पर अंदर नहीं जाते थे, वो अंदर जाती थी और कुछ मुरली वगैरह कुछ पढ़ के बाहर आती थी, हम अंदर नहीं जाते थे। एक ही बार अंदर गए नागपुर अमरावती सेंटर, एक बार अंदर गए, मुरली चालू थी, हम पीछे जाकर बैठे, मुरली में महावाक्य चले, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, आउट। हमने कहा जो लोग भक्ति को ही समझते नहीं है, भक्ति की महिमा नहीं जानते, वहां हम रुक के क्या करें। तो हम बाहर चले गए। परंतु हां एक बात ने हमें हमेशा आकर्षित किया है, पवित्रता ने, श्वेत वस्त्रधारिणी ये बहने, इनके प्रति तब से लेकर आज भी, आज तक और आज तो बहुत ज्यादा, हमारे मन में बहुत ज्यादा सम्मान था। हमें याद है हमने बचपन में ही एक कविता भी लिखी थी जब इन ब्रह्मा कुमारियों को एक बार रास्ते से आते देखा था, क्योंकि हमारा जो पढ़ाई है वो क्रिश्चियन स्कूल में हुई थी, अमरावती ज्ञान माता होली क्रॉस कॉन्वेंट वहां पर। तो बचपन से हमको पढ़ाने वाली जो थी वो नंस थी, श्वेत वस्त्र पहनती थी। जब हम डॉक्टर बने तो नर्सेस जो थी वो भी व्हाइट वस्त्र पहनती थी, जब ब्रह्मा कुमारीज में आए तो ये बहने जो व्हाइट ड्रेस पहनती थी। तो व्हाइट के प्रति हमको बचपन से ही थोड़ा एक, क्योंकि जो हमारी सिस्टर्स थी, सिस्टर डैफनी, फादर सिरैक, तो उनके प्रति हमारे मन में एक बहुत ज्यादा आदर और सम्मान था और एक आकर्षण था। और हमने कहीं पढ़ा भी था, स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, अ डे विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर। एक समय आएगा भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और परमात्मा संदेश सारे विश्व में फैलाएगी। विवेकानंद की मृत्यु 1902 में हुई है, उसके पहले यह भविष्यवाणी की है। बाबा आए हैं 1936-37 में, इसके लिए बहुत ज्यादा आदर था। तो हम उसको भक्त नहीं बना पाए, क्योंकि वो उसका अपना ही नशा था और उसके बाद हम कभी गए भी नहीं। तो जब भी हम आते थे द्वंद्व होता था हमारा। तो हमारा MBBS हर दिन हमने ढूंढा और ढेर सारी किताबें पढ़ी भगवान को पाने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। परंतु एक द्वंद्व था वहां पर, मेडिकल की पढ़ाई और अध्यात्म की पढ़ाई। दिवस रात्र अम्मा युद्धा सा प्रसंग, अंतर बाह्य जग आनी मन। दिन रात ये जैसे द्वंद्व था, अम्मा युद्धा सा प्रसंग, ऐसी ही हमारी स्थिति थी। पर हमको याद है कि हमारे ही हॉस्टल के पीछे यवतमाल में कृष्ण ज्ञान मंदिर था। हमने बहुत सारी पढ़ाई उसी मंदिर में बैठ के की। MBBS पूरा हुआ, हमारा बहुत कम ध्यान रहता था मेडिकल की पढ़ाई में, क्योंकि सारा ध्यान भगवान की तलाश में था, ढूंढने में था। फिर भी वो जो तलाश थी, वो जो ज्योति जगी थी, वो थोड़ी सी मध्यम हुई थी यहां पर, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई और ये सब। पढ़ाई पूरी हुई, फिर भी वो जब उसका भी रिजल्ट जो आया फाइनल ईयर का, उसमें भी हम क्योंकि पढ़ाई में अच्छे थे, ओवरऑल आई वाज ओवरऑल टॉपर मेडिसिन और वो जो भी था उसमें। तो MBBS पूरा हुआ, उसके बाद छुट्टियां थी और सब स्टूडेंट्स घर चले गए, परंतु हम नहीं गए, हम वहीं रुके। और वहां पे एक सेकंड टर्निंग पॉइंट आया। यहां पर एक बहुत अच्छे वक्ता है, अलकाश्री जी, सुना है किसी ने उनको, देखा है, रामायण की कथा करते हैं, उनको विदर्भ की मीरा कहते हैं। 7 दिन तक यवतमाल में हमने उनको सुना, देवी जी, अलकाश्री जी, देवी जी, हाँ। तो उनको हमने सुना था यवतमाल में, 7 दिन तक सुना निराहार रहकर, सुबह का सत्र, शाम का सत्र, कोई नहीं था हॉस्टल में, हम ही थे बस। और यहां वो ज्योति फिर से जागी परमात्म प्रेम की। उसके बाद हमारी इंटर्नशिप चालू हुई, 1 साल इंटर्नशिप, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में घूमना होता है, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑप्स, ऑर्थो, 1 साल इंटर्नशिप। इसमें वो जो एक सेवा का भाव था, हे विश्व चिमाजे घर वसुधैव कुटुंबकम का, वो वैसे फिर से जागृत हुआ। यहां भक्ति थोड़ी कम हुई और वो सेवा का भाव आया, जे जे भेटी जे भूत तेते मानी जे भगवंत। 1 साल जो हमारा था वो इंटर्नशिप का, वो ऐसा था कि सब लोग कहते थे ये बहुत ज्यादा सिंसियर है, पर वो हमारी सिंसियरिटी नहीं थी। हमको ये भाव था कि जिसे हम देख रहे हैं वो स्वयं नारायण, दरिद्र नारायण है, वो स्वयं भगवान है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, वो रोगी नहीं है। द सर्विस ऑफ मैन एज गॉड। और जब हम घर आते थे तो हमारी बहन कहती थी हम आत्मा आत्मा समझ कर सबकी सेवा करते हैं, हम उसको कहते थे हम सबको परमात्मा समझ कर सेवा करते हैं, अब बताओ कौन बड़ा है, तुम बड़े या हम बड़े। तो इंटर्नशिप, वो जो 1 साल था इंटर्नशिप का, वो ऐसा था हमारा कि उसमें जैसे कि हम 24 घंटे वहीं, लोग कहते थे तुम अभी भी यहीं हो, सुबह भी देखा, दोपहर को भी देखा, रात को भी देखा, कभी भी आओ यहीं, कैजुअलिटी में तो कभी इमरजेंसी रूम में, तो कभी ड्रेसिंग कर रहे, तो कभी कुछ कर रहे। और हमने एक देखा ऑब्जर्वेशन कि वो करते करते हमको आंसू आ जाते थे। हमने पूछा भी कईयों से ऐसा क्यों होता है, कईयों से अर्थात जो भक्ति में थे, उन्होंने कहा ये अष्ट सात्विक भाव है और इनको रोकना नहीं। हमने कहा ठीक है। उसमें बहुत सारी और बातें हुई, हमको तो याद नहीं अभी वो इतनी सारी बातें। इंटर्नशिप भी पूरा हुआ, फिर सबने कहा अब क्या करोगे, सबने कहा तुम एंट्रेंस एग्जाम दो। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था MD करना या पोस्ट ग्रेजुएशन करना, और वो सब में कोई इंटरेस्ट, हमें तो केवल सेवा करनी है, सेवा तो अभी भी कर रहे हैं एज ए इंटर्न, हम क्यों कुछ करें आगे का? नहीं, सबने कहा तुम करो तो हम क्या करें? तो फिर हमने सोचा हम नागपुर आएंगे। यहां पर मेडिकल कॉलेज में हमारा भाई फर्स्ट एमबीबीएस में था, हम तीनों ही डॉक्टर हैं, बहन एक साल बड़ी, फिर हम और भाई दो साल छोटा। तो बहन थी अमरावती में, हम थे यवतमाल में और छोटा भाई इधर नागपुर में। इसका तो हमारे माता पिता को और ही ज्यादा बहुत नशा और गर्व जिसको कहेंगे वो सब कुछ था उनको। मतलब हमारे पूरे खानदान में ऐसा कोई नहीं था कि जिनके एक ही परिवार में तीन डॉक्टर हो। इसके लिए उनको फिर दुख भी ज्यादा हुआ, आगे वो सुनाऊंगा क्यों। तो हम नागपुर आए, नागपुर मेडिकल कॉलेज बॉयज हॉस्टल जहां हमारा भाई रहता था उसके साथ हम रहने लगे। वो अकेला था पढ़ाई करने के लिए। किस लिए आए हम यहां? एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बिना पढ़ाई किए एडमिशन नहीं मिलती है, एमडी के लिए इतना आसान नहीं है। तो हमने यहां आए, थर्ड टर्निंग पॉइंट, फिर हम मौन में चले गए यहां उसके कमरे में। हम कुछ दिन तो गए लाइब्रेरी में, पढ़ाई करने लगे, एमसीक्यू पढ़ने लगे, एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई करने लगे, और धीरे 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 फिर हमने भटकना आरंभ किया। कभी राम कथा, कभी भागवत कथा, कभी कभी दूसरी दूसरी भाषाओं में भी कथा सुनी। कभी गुजराती में कहीं कथा हो रही थी नागपुर में, वहां गए। और फिर एक दिन शाम का समय था, धंतोली, वहां पर रामकृष्ण मठ है, वहां आए और वहां बैठे। अभी कल रात में हमने वहां का मंदिर देखा, तब वो मंदिर नहीं था, तब अलग ही था वो, अभी तो पूरा बदल गया है, तब कुछ और था। हम वहां गए, वहां पर आरती चालू थी, खंडन भवबंधन वंदी तुमाए। हम वहां जाके बैठे, वो मृदंग और वो अगरबत्ती की खुशबू, कल कोई सुना रहा था ना अगरबत्ती के फायदे, योग लगने में आसानी होती है, तो वो एक टिपिकल पर्टिकुलर स्मेल थी अगरबत्ती की, वो जो खुशबू थी। और हम बैठे और अशरीरी, तो हम वहां रुके थोड़े देर, फिर रोज जाने लगे, किसी से बात नहीं किया। वहां पर गए, बैठे, आरती हुई, हम वापस। धीरे धीरे एक किताब पढ़ी, अमरावती में भी वो केंद्र था पर छोटा था, वहां कुछ भी नहीं था, वहां कभी कभी जाते थे। फिर वो एक किताब ली हमने, विवेकानंद की जीवन, स्वामी निखिलानंद इंग्लिश में, और बायोग्राफी, वो पूरी हुई। वहां पर लाइब्रेरी है साहित्य विभाग, वहां से श्री रामकृष्ण वचनामृत वो किताब पढ़ी। और जैसे जैसे वो किताब पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, हमारे मन में वैराग आते गया। कहते हैं कि वो किताब जिसने पढ़ी, द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, कितने सारे लोग सन्यासी बन गए वो किताब पढ़कर, ऐसी वैराग की बातें उसमें है। वो किताब हम पढ़ने लगे, एक एक करके उस लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी, उपनिषद थे वो पूरे किए। यहां पर बर्डी पर पुरानी किताबें मिलती है, अभी पता नहीं हमको मिलती है नहीं मिलती है, ब्रिज के नीचे पुरानी किताबें मिलती है। हमारे पास पैसे तो थे नहीं, तो हम वहां से किताबें खरीदने चालू किए। कोई 15 रुपए बोलता तो हम कहते थे 10 रुपए में दो। एक एक करके बहुत सारी किताबें, फिर उसी समय हमें यह चश्मा लगा। अलग अलग जगह गए, एक समय मेडिकल कॉलेज के पास में एक चर्च है, बीच में हमने, क्योंकि श्री रामकृष्ण ने हर धर्म की साधना की, हमने सोचा हमें भी हर धर्म की साधना करनी है। 3 मास केवल चर्च में गए, सब छोड़ दिया, हिंदू धर्म और बाकी सारे धर्म, वो जो चर्च था वहीं पर गए। वहां के पादरी जो थे फादर, उनको लगा कि अभी बस मैं आने ही वाला हूं उनके पास, मतलब और वो मुझे बताने भी लगे, देखो तुम्हारा जो राम है ना उसने रावण को मारा, कंस कृष्ण ने कंस को मारा, जीसस क्राइस्ट ने किसको मारा, तो बताओ कौन महान है, तो आ जाओ इधर। पर हम इतना जल्दी मानने वाले नहीं थे। उन्होंने हमको बाइबल दी, वो बाइबल पूरी की। फिर यहां पर ही नागपुर में अमरावती रोड पर चिन्मय मिशन है स्वामी चिन्मयानंद का, वहां गए, वहां से कुछ किताबें ली। एक दिन रात में हमने साईं बाबा को देखा, तो नागपुर मेडिकल कॉलेज से लेके तो साईं बाबा का मंदिर कौन सी जगह है मुझे पता नहीं, बहुत बड़ा जो मंदिर है, कहां है वो जो मंदिर है साईं मंदिर, वहां तक हम सुबह सुबह पैदल आए थे। एक बार किसी ने हमें मेडिकल कॉलेज के पीछे ताजुद्दीन बाबा की दरगाह है वहां लेकर गए, फिर हम वहां जाने लगे। फिर उनका एक यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बस से जाना पड़ता है, उनका दरगाह है बहुत दूर वाकी। एक दिन हम वाकी गए और वहां से पैदल, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, कहीं बीच से ही उतरे, वो बस के पूरे पैसे नहीं थे, हम बीच से उतरे और वहां से वहां गए और सारा दिन एक दिन वहां बिताया। नागपुर में एक बार रामनवमी थी, रथ यात्रा जिसमें खींची जाती है, अभी हमको जगह का नाम याद नहीं, कहां पर हमें याद नहीं है, कहां पर उत्तरेश्वर, हां, तो वहां से उस मंदिर से वो जो रथ था उसको खींचते खींचते हम बहुत दूर तक निकल गए थे, इतना दूर तक निकल गए थे कि रात में वहां एक बगीचा था वहीं सो गए थे। वो अभी याद नहीं, तो क्योंकि पैसे भी नहीं थे, सबसे मेन प्रॉब्लम हमारा पैसे का था। जो जो थोड़े थोड़े रहते थे वो तो किताबों में चले जाते थे। और ये सब जब हम कर रहे थे तो एक लगन उत्पन्न हुई सत्य को जानने की, परमात्मा तक पहुंचने की। सत्य क्या है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म क्या है। हमको याद है एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और हमारे मन में तीव्र संकल्प उत्पन्न हुआ कि विवेकानंद का जो साहित्य है, 8 वॉल्यूम्स, अभी 9 हो गए हैं, 8 खंड में विवेकानंद साहित्य है जिसमें उनका संपूर्ण सारे व्याख्यान है, एक रात 8 बजे, 8 भी नहीं, 6:30 या 7 बजे बारिश में हम भीगते भीगते थंतोली पहुंचे थे। और वो जो पैसे जो जमा किए थे उससे वो पूरा जो उनका साहित्य है वो खरीद कर लेके गए थे बारिश में, 15-20 दिन में उसको पूरा पढ़कर पूरा किया, 8 वॉल्यूम्स। वो पढ़ते जब थे तो हमको लगता था ये सब हमें पता है, केवल रिवाइज कर रहे हैं। और उस मेडिकल कॉलेज में अपने भाई के कमरे में बैठकर हमको लगता था कि हमारे सामने एक बहुत बड़े बहुत सारे लोग बैठे हुए और जो लिखा है ये हम बोल रहे हैं। वो पूरा हुआ एक दिन, क्योंकि विवेकानंद को पढ़ने के बाद लेट एवरी वन वर्कशिप इज ओन मैजिस्ट्री, हमारा माइंड जो था बहुत ब्रॉड हो चुका था, बहुत ब्रॉड। एक दिन हम ब्रह्मा कुमारीज वसंत नगर सेंटर पहुंचे, क्योंकि हमारी बहन का हमने विरोध किया था, परंतु अब हमारा मन, हम क्यों विरोध करें, वो भी एक मार्ग है जैसे इतने सारे मार्ग है। हां, और एक गुलाब महाराज, प्रज्ञा चक्षु गुलाब महाराज, और एक मेहर बाबा मेहराबाद, और एक हमारा भाई कुछ समय के लिए हॉस्टल को छोड़कर एक दूसरे कमरे में गया पढ़ाई करने के लिए खास, उस घर के जो घर मालक थे वो सत्य साई बाबा के भक्त थे। एक दिन रात में हमने सत्य साई बाबा को भी देखा फिर, क्योंकि वो जो घर मालक थे वो बार बार, पता नहीं उनको हम में कुछ दिखता था, बार बार आके कुछ कुछ बताते थे ज्ञान की, उनके ज्ञान की बातें। उनके कमरे में वो पूरा ही था सत्य साई बाबा, साई साई साई, दिन रात वो धुन बजती रहती थी, नित दिन साई साई साई, निस दिन साई साई साई, सत्य साई बाबा। वहां से निकले विपाशना, वहां से निकले नागपुर में ही कहीं पर दीक्षा भूमि, 14 अक्टूबर यहां आए थे, अंबेडकर जयंती 10 अक्टूबर शायद या 14 अप्रैल, मस्जिद में हम नहीं गए, डर लगता था। तो एक दिन हमने सोचा अब ब्रह्मा कुमारीज में जाके देखते हैं। वो दिन था 18 जनवरी का, हमें पता नहीं था, सब लोग मौन में थे, हमारे लिए और ही अच्छा हो गया। हम पीछे पहले तो ढूंढा, ढूंढते ढूंढते पहुंचे वसंत नगर सेंटर, सबसे पीछे जाके बैठ गए। उस दिन मौन था और सब लोग दो संधियां रखी थी, बारी बारी से आके योग कर रहे थे और भट्टी चल रही थी। हमने भी सारे दिन भट्टी की, हमारी अपनी भट्टी थी, इनकी अपनी भट्टी, किससे क्या पूछना, पूछे तो शक हो जाएगा इनको, इसके लिए हम चुप मौन, किसी से कुछ नहीं कहा, सुबह से लेकर शाम तक बैठे, कुछ खाया भी बीच में और फिर चले गए। फिर संकल्प आया फिर एक बार जाए, कुछ दिनों के बाद फिर गए, फिर गए तो वहां पर वो जो वरांडा है जहां पे कोर्स कराते हैं बहने बैठ के, बाजू में हम वहां गए और देख रहे थे तो एक बहन बैठकर कोर्स करा रही थी। तो हमने कहा हम बैठे, उसने कहा बैठो, तो वो कोर्स चालू था जिसमें वो समझा रही थी बहन जीसस क्राइस्ट के बारे में। जीसस क्राइस्ट ने कहा है गॉड इज लाइट। वो बहन कौन थी हमें पता नहीं, याद भी नहीं, बहुत नई बहन थी कोई। फिर वो कह रही थी कि देखो बाइबल में भी लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट कह रहा है गॉड इज लाइट। हमने कहा एक प्रश्न पूछे, उसने कहा पूछो। हमने कहा कहां कहां है, उसने कहा बाइबल में। हमने कहा बाइबल में कहा, न्यू टेस्टामेंट में कहा कि ओल्ड टेस्टामेंट में कहा। तो उसने कहा वो जीसस क्राइस्ट का जीवन किस में है। हमने कहा न्यू टेस्टामेंट में। तो उसने कहा वहीं पे कहा है। हमने कहा है कहां पर कहा है, मैथ्यू में कहा है, ल्यूक में कहा है, जॉन में कहा है कि पीटर में कहा है, कहां कहा है। उसने कहा कल बताऊंगी। हमने कहा छोड़ो, क्यों हम पूछे इससे, जो चल रहा है इनको चलने दो। परंतु हमें बहुत आदर था, हमने वहां से किताब ली आदिदेव इंग्लिश, थोड़ी सी पढ़ी और वो किताब पढ़कर एक तूफान मच गया हमारे मन में कि उसमें एक जो कॉन्सेप्ट था गॉड का, पॉइंट ऑफ लाइट और किसी में प्रवेश, अब इतना, ये एक तरफ वेदांत शास्त्र, एक तरफ भक्ति का शास्त्र, एक तरफ ब्रह्म क्या है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, अयमात्मा ब्रह्म खल तत्व मसी सर्व खलविदम ब्रह्म, एक तरफ वेदांत, एक तरफ भक्ति, और अभी एक नई चीज, अब क्या करें इसका। हम ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा हमें मिले जिसने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा और ये भी पढ़ा है और हमको बताए कि सत्य क्या है। फिर हमने ही सत्य को ढूंढा, हमने ही एक ये किया कि ब्रह्म भी सत्य है, वो शिव भी सत्य है, पर वो शिव ही ब्रह्म है, ऐसा अपना ही एक थोड़े कंक्लूजन्स निकाले अपनी ही बुद्धि से सोच सोच कर कि ये भी एक मार्ग है। परंतु हां, हम अंदर ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाएंगे क्योंकि यहां अंदर केवल बहने दिख रही है, बाकी जो है ये हम नहीं बन सकते, आना और जाना। विवेकानंद ने एक जगह कहा है आई डोंट वॉन्ट एम्बिग्यूअस टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज हु आर हाफ मंक्स एंड हाफ हाउस होल्डर्स, मुझे ऐसे संदिग्ध लोग नहीं चाहिए मेरे आश्रम में जो आधे सन्यासी और आधे गृहस्थी। तो तो हमने सोचा अंदर तो केवल बहने रहती, हमने किसी को देखा ही नहीं वहां, केवल बहने हैं तो हम क्यों जाएं अंदर, हम ऐसी संस्था में नहीं जाएंगे। ये भी एक मार्ग है भगवान को पाने का, पर हम नहीं जाएंगे। तो जब हम ये सब कुछ पढ़ रहे थे और फिर से मौन, वैराग, ईश्वरीय प्रेम और एक राधे राधे महाराज,